वासुदेवाय
ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति
नैष्ठिकी
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम् चौथा स्कंध 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 37
मा
जातु
जातु
तेजः
तेजः
प्रभवेत्
महा
ऋद्धिभिः
तितिक्षया
तपसा
विद्यया
च देदीप्यमाने
देदीप्यमाने
अजिता
अजिता
देवतानां कुले
कुले
स्वयं
स्वयं
राजा
राजा
कुलात्
कुलात्
द्विजानां मा जातु तेजः प्रभवेन्महर्द्भिः
मा जातु तेजः प्रभवेन्महर्द्भिः तितिक्षया तपसा विद्यया च
देदीप्यमाने
जितदेवतानां
कुले स्वयं राजकुलात् द्विजानां
कुले स्वयं राजकुलात् द्विजानां
मा जातु तेजः प्रभवेन्महर्द्भिः
मा जातु तेजः प्रभवेन्महर्द्भिः
तितिक्षया
तपसा विद्यया च
देदीप्यमाने
जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां
मा जातु तेजः प्रभवेन्महर्दिभिः तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने
जितदेवतानां
कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां
तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां
जातु तेजः प्रभवेन्महर्दिभिः
तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां जातु तेजः
प्रभवेन्महर्दिभिः
तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्
द्विजानां वर्ड फॉर वर्ड अनुवाद और पहला परिच्छेद पढ़
शब्दार्थ माँ कभी मत करो
चातु
किसी भी समय
तेजह
परम शक्ति
प्रभवे
प्रकट करते हैं महा
बड़ी
रिद्धि भी ऐश्वर्य से
तितिक्षया
सहिष्णुता से
तपसे
विद्या
शिक्षा द्वारा
भी देदीप्यमाने पहले से
महिमा मंडितों पर
अजित देवतानां वैष्णव अथवा भगवान के भक्त के कुले
समाज में
स्वयं
व्यक्तिगत रूप से
राजकुला
राजपरिवार से बड़ा
द्विजाना
ब्राह्मणों का
अनुवाद और तात्पर्य अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता तपस्या ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित न करे और उनको अपमानित करने से बचे तात्पर्य पिछले श्लोक में पृथु महाराज ने राज्य के शासकों तथा नागरिकों के लिए भक्ति की महत्ता बताई है अब वे बता रहे हैं कि भक्ति में क्रमशः किस प्रकार स्थिर हुआ जाए श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की उपमा एक लता से दी थी लता का तना कमजोर होता है अतः उसे बढ़ने के लिए दूसरे वृक्ष के सहारे की आवश्यकता होती है और बढ़ते हुए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि यह नष्ट न हो जाए भक्ति रूपी लता को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध से बचने पर विशेष बल दिया है ऐसे अपराध वैष्णव अपराध कहलाते हैं यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसकी भक्ति प्रगति रुक जाती है चाहे कोई भक्ति में कितना ही अग्रसर हो यदि वह किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी सारी उन्नति चौपट हो जाती है शास्त्रों में बताया गया है कि महान योगी दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था फलस्वरूप अपराध से बचने को अपने को बचाने के लिए उन्हें एक वर्ष तक निरंतर सारे ब्रह्मांड में यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में भी भ्रमण करते रहना पड़ा अंत में जब वे वैकुंठ में भगवान के पास पहुँचे तो भी सुरक्षा नहीं मिली अतः वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध न करने के लिए सतर्क रहना चाहिए सबसे जघन्य वैष्णव अपराध गुरुर अपराध है जो गुरु के चरणों पर किया जाता है भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए गुरु अपराध अत्यंत जघन्य माना जाता है गुरुर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम पद्म पुराण पवित्र नाम के जप के विपरीत जो 10 अपराध किए जाते हैं उनमें प्रमुख अपराध है गुरु की अवज्ञा तथा वैदिक साहित्य की निंदा
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादांग सह कन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनुवाद दोहराइए। ब्राह्मण तथा वैष्णव,
ब्राह्मण तथा वैष्णव
अपनी सहिष्णुता,
अपनी सहिष्णुता
तपस्या,
तपस्या
ज्ञान,
ज्ञान
तथा शिक्षा,
तथा शिक्षा
जैसे गुणों के द्वारा,
जैसे गुणों के द्वारा
स्वयं ही
महिमा मंडित
होते हैं,
महिमा मंडित होते हैं।
इन दिव्य रिद्धियों से के कारण,
इन दिव्य रिद्धियों के कारण
वैष्णव,
वैष्णव
राजकुल से,
राजकुल से
अधिक शक्तिशाली होते हैं,
अधिक शक्तिशाली होते हैं।
अतः
अतः
यह सलाह दी जाती है,
यह सलाह दी जाती है
कि राजकुल,
कि राजकुल
इन दोनों,
इन दोनों
कुलों पर,
कुलों पर
अपना शौर्य,
अपना शौर्य
विक्रम,
विक्रम
प्रदर्शित न करें,
प्रदर्शित न करें
और उनको,
और उनको
अपमानित करने से बचें,
अपमानित करने से बचें।
हरे कृष्णा। तो पृथु महाराज बहुत महत्वपूर्ण उपदेश अपने प्रजा को दे रहे हैं। स्वयं एक सावधानी का संदेश अपने ऊपर भी वो ले रहे हैं, क्योंकि वो राजकुल के सदस्य है, स्वयं राजा है महाराज पृथु, और वो एक चेतावनी देते हैं उन लोगों को जो कि राजकुल के सदस्य हैं, राज परिवार में रहते हैं, कि ये मत समझना कि क्योंकि अभी तुम्हारा इतना ऊंचा पद है, तुम राजा हो, रानी हो, राजकुमार हो इत्यादि, कि तुम अभी किसी का भी अपमान कर सकोगे नहीं। और विशेष रूप से जो ब्राह्मण और वैष्णव होते हैं उनका तो कतई अपमान नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति के पास स्थान, प्रतिष्ठा, पद, ऐश्वर्य, सौंदर्य आदि ये सब होता है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा घमंड उसके अंदर आ जाता है। कोई भी एक प्रकार का ऐश्वर्य किसी में आ जाए तो घमंड आने की संभावना है। अभी छह प्रकार के ऐश्वर्य बताए जाते हैं और ये श्री कृष्ण में पूर्णतया विद्यमान है, शत प्रतिशत असीमित मात्रा में। तो ये कौन से हैं छह ऐश्वर्य, कौन सा श्लोक है ये? ज्ञानम वैराग्योश्च शन्नम भगा भगा इतिंगना। तो क्या मतलब इस श्लोक का?
ऐश्वर्यस्य पहले ऐश्वर्य का वो ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य तो वीर्य यशा ऐश्वर्यस्य यशा वीर्य और शक्ति
सौंदर्य
फिर ज्ञान और वैराग्य ये शंगनम ये पूर्ण तरह से जिसका पास है उसको
देव कितने और फिर से बोलो
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञानवैराग्योच्च शन्ना भवति ऐश्वर्य समग्र से यानी कि पूरी तरह से ऐश्वर्य वीर्य से यानी कि वीरता यश पूर्ण मात्रा में यश श्री यानी कि पूर्ण मात्रा में सौंदर्य और ज्ञान पूर्ण मात्रा में ज्ञान और पूर्ण मात्रा में वैराग्य शन्ना भगवती गणा तो ये भगवान के छह ऐश्वर्य
तो जिसके पास ये छह ऐश्वर्य हैं या छह की बात तो दूर है एक भी है अधिक मात्रा में अन्यों की तुलना में तो वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है आकर्षक हो जाता है जैसे किसी के पास बहुत सौंदर्य है तो व्यक्ति बहुत आकर्षक हो जाता है अन्यों के लिए कोई व्यक्ति बहुत ही बड़ा ज्ञानी है तो सबके लिए आकर्षक हो जाता है कोई बहुत बड़ा बलवान है तो वो भी आकर्षक बन जाता है कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है करोड़पति तो वो आकर्षक बन जाता है यहाँ तक कि कोई जात बहुत बड़ा वैरागी भी है तो वो भी प्रसिद्ध हो जाता है वो भी आकर्षक हो जाता है अपने वैराग्य के लिए तो इसलिए लोग सम्मान देते हैं तो एक बार प्रभुपाद जी रेलगाड़ी में जा रहे थे तो रेलगाड़ी में कोई लोग आए उनको देख के प्रणाम किया उन्होंने कोई भारतीय परिवार ही था उन्होंने प्रणाम किया तो प्रभुपाद जी ने पूछा अपने भक्तों को ये लोग जब चले गए थे कि पता है कि ये लोग ने मुझे प्रणाम क्यों किया ये मुझे जानते नहीं हैं मैंने कभी उनको देखा नहीं उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं परंतु मुझे देखकर उन्होंने प्रणाम किया क्यों प्रभुपाद जी आप शुद्ध भक्त हैं इसलिए उनको क्या पता मैं शुद्ध भक्त हूँ नहीं हूँ तो ये वस्त्र देखे से क्या पूछा क्योंकि मैंने यौन जीवन त्याग दिया है ये सबसे बड़ी विरक्ति है क्योंकि मैंने ये त्याग दिया तो इसलिए देखो एक तरह का आकर्षण तो ये लोग अरे आपने ये त्याग दिया है तो इसलिए ये एक आकर्षण का कारण बन जाता है कि आपने ये भी त्याग दिया वो त्याग दिया इस प्रकार से वैराग्य ये भी एक आकर्षण का कारण हो जाता है मैंने आपको बताया होगा कि एक बार जब मैं कुंभ मेला में गया था 1990 था या 89 ऐसे कुछ हाँ 89 में था शायद प्रयागराज में तो वहाँ एक बाबा जी थे और कुंभ मेला में बहुत सारे लोग उनके पास जा रहे थे और वो एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे उनका छोटा एक ऐसा कुटिया मंच बनाया हुआ था वो उसके ऊपर ही रहते थे तो इतने सारे हजारों हजारों लोग आते थे उनको मिलने के लिए और क्यों आते थे क्योंकि उन्होंने 12 साल तक बात नहीं किया था यौन जीवन भले कोई त्याग दे लेकिन बात करना बंद कर दे ये तो इतना मुश्किल है उपवास करना मुश्किल होता है परंतु चुप बैठना और भी ज्यादा मुश्किल किसी न किसी तरह से कोई भले उपवास कर भी ले परंतु उसे बोले कि चुप बैठो ए ओनर नहीं शक्यच नहीं तो जो इस चीज को त्याग देता है ऐसे विरक्ति दिखाता है तो अरे क्या आदमी है हाँ सब प्रणाम करने आ जाते क्यों क्योंकि उसने बात नहीं किया 12 साल से तो वैराग्य भी एक आकर्षण का कारण बन जाता है तो चाहे कोई धन हो किसी के पास बहुत शूर वीर या बलवान व्यक्ति हो है ना
और कोई बहुत ही सुंदर हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, तो ऐसे लोग आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं अन्यों के लिए। परंतु मनुष्यों में हम देखते हैं कि इनमें से बहुत सारे गुण एक आदमी में नहीं रहते हैं। यदि कोई सुंदर होता है तो हो सकता बुद्धि नहीं है कुछ। तो कैसे, एक विदेश के एक बहुत बुद्धिमान एक लेखक थे, उनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लेकिन इतने बुद्धिमान थे परंतु दिखने में बहुत कुरूप, कोई देखे तो उनको भाग जाए उनको ऐसे। और एक बार एक जगह वो गए थे तो एक महिला उनके पास आई। वो महिला बहुत सुंदर थी लेकिन अपने अल्प बुद्धि के लिए भी प्रसिद्ध थी, ज्यादा बुद्धि नहीं थी। तो महिला ने जाके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कहा कि कितना अच्छा होता हमारी शादी हो जाती तो हमारे बच्चा कैसे होता, आपकी बुद्धि और हमारा सौंदर्य। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इतने बुद्धिमान से पट करके उन्होंने उत्तर दिया, यदि उल्टा हो जाए तो क्या होगा, हमारे बच्चे को मेरा रूप और तुम्हारी बुद्धि आ गई तो फिर क्या होगा। तो तात्पर्य क्या है कि किसी के पास बुद्धि हो सकती है, सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य है तो बुद्धि नहीं है, सौंदर्य भी है बुद्धि भी है बल नहीं है, किसी के पास धन है वैराग्य नहीं है। तो एक कभी दो हो सकते हैं, तो सारे ऐश्वर्य एक साथ एक व्यक्ति में होना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ। ऐसे कोई व्यक्ति मिलेंगे जो सुंदर भी है, बलवान भी है, वैरागी भी है, बुद्धिमान भी है, ये वो सब कुछ इसमें है, सारे गुणों से संपन्न व्यक्ति विरला ही दिखाई पड़ता है कहीं। और जब ऐसे गुण ऐसे ऐश्वर्य किसी में होते भी हैं, जैसे कोई धनी हो तो उससे ज्यादा धनी कोई व्यक्ति होता है, कोई सुंदर हो लेकिन उससे ज्यादा सुंदर और कोई व्यक्ति मिल जाता है, आज नहीं तो कल ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, जितना भी बुद्धिमान हो तो उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई मिल जाएगा। मैं एक अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। मेरे पाठ मेरे कक्षा में एक लड़का था, इतना बुद्धिमान था वो जीवन में जितने भी परीक्षा में कक्षा में था एक नंबर आता ही था उसका। और ऐसी बुद्धि उसकी कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा में सारे बोर्ड के परीक्षा में पहला नंबर, संपूर्ण बोर्ड में, कॉलेज में तो है ही, संपूर्ण बोर्ड में पहला नंबर। और फिर उसको आईआईटी में भर्ती हो गई, ठीक है। आईआईटी के परीक्षा देने की भी आवश्यकता नहीं थी, दी, लेकिन उसमें भी पहला दो ऐसा कुछ नंबर आया, पहला नंबर। और फिर जब पहले वर्ष में पहला नंबर आ गया आईआईटी के अंदर, ठीक है, दूसरा वर्ष शुरू हो गया, दूसरे वर्ष में दूसरा नंबर आ गया, उसने क्या किया, अपने हॉस्टल में पंखे से ये डाल के आत्महत्या कर दिया। इतना बुद्धिमान लड़का था वो, आज भी मुझे याद है, उसका नाम था जलज। जलज मतलब कमल। हम वो सहन नहीं कर सका कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई निकला, एक तरह का घमंड भी आ जाता है ना, इतना हम इतने बुद्धिमान, हम सब पहला नंबर, सबसे पहले से बचपन से लेकर अभी तक पहला 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 नंबर, अभी हम दूसरे नंबर पे आ गए, इसके मतलब हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है। तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई सोचेगा कि मेरे पास बुद्धि है लेकिन और ज्यादा बुद्धिमान कोई मिलेगा, आज नहीं तो कल, जितने भी ये छह ऐश्वर्य हैं इनमें से हमसे अधिक होने वाले ऐसे व्यक्ति मिलेंगे ही मिलेंगे, और फिर हम निराश हो जाएंगे, हम सोचेंगे अरे हम इतने बुद्धिमान इतने धनी ये वो, फिर इसलिए देखते हैं लोगों में ईर्ष्या इतनी होती है कि इससे मेरे से इसके पास मेरे से ज़्यादा धन है, उसके पास मेरे से ज़्यादा सौंदर्य है, वो मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है। आपने अपने पाठशाला में वगैरह देखा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमने हमारे पाठशाला में तो इसे देखा है, विद्यार्थी जो इतने एक स्पर्धा के भाव में थे कि गिने चुने लोग जो पहले दो तीन नंबर में आते थे कक्षा में, तो कैसे दूसरे को नीचे करके अपना पहला नंबर लाना, ये छोटे से बचपन से इनके मन में ये था, इसको मेरे से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो जब हमें लगता है कि मेरे पास कुछ है अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, अन्यों से ज़्यादा है, तो उसको अन्यों की ईर्ष्या होती है कि इसके अंदर कुछ दिखाई पड़े वही गुण, तो उसको सहन नहीं होता है, उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। और ये केवल मनुष्यों की नहीं है, देवलोक में भी ऐसा है। इंद्रदेव अपने ऐश्वर्य से अपने पद से इतने आसक्त रहते हैं कि जब भी कोई ऐसी तपस्या करता है यज्ञ आदि करता है जिसके द्वारा ऐसे कोई संभावना होती है कि वो भी इंद्र देव की गद्दी को प्राप्त करे, तो इंद्रदेव इतने विचलित हो जाते हैं कि उसके तप आदि को भंग करने का प्रयास करते हैं। देवताओं के राजा होने के बाद भी ये वृत्ति नहीं जाती ईर्ष्या की और आसक्ति की। तो ऐसे को उदाहरण बता सकते हैं आप कि इंद्रदेव ने अन्यों की तप और यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया क्योंकि उनको लगा कि ये लोग मेरा स्थान ले लेंगे। नरनारायण ऋषि वो हिमालय में बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रदेव ने सोचा ये लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं तो ये इंद्र बन जाएंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि ये देवलोक देवता आदि हैं, ये सब पद है ना। आज कोई पुरंदर नाम का व्यक्ति है जो इंद्र है, और अगली बार बलि महाराज है वो इंद्र बन जाएंगे, उसके बाद और कोई इंद्र बन जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री है, ये सब पद होते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अप्सराओं को भेजा, और अप्सरा के अर्धनग्न अवस्था में नृत्य करने लगे उनको आकर्षित करने के लिए, और फिर नरनारायण ऋषि ने क्या किया, उन्होंने सोचा अच्छा ये बेचारा इंद्र हमको ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपने योग शक्ति से एक ऐसे सुंदरी को उत्पन्न किया, इसका नाम था उर्वशी। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि ये सारे अन्य महिलाएं जो थी वो देख के भाग गई, इनकी शर्मिंदा हो गई कि इसके सामने तो हमारा सौंदर्य कुछ भी नहीं। तो इंद्रदेव का मान भंग हो गया, और पृथु महाराज, पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए थे अश्वमेध यज्ञ, और सौवा करने जा रहे थे तब इंद्रदेव ने आके बार बार घोड़े को चुराया। क्यों, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्रदेव के पद को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। तो इंद्रदेव को लगा कि अब ये क्या हो गया, अब ये इसने 100 कर लिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा पद चले जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि देवलोक में भी ये वृत्ति रहती है। तो और इंद्रदेव भक्त हैं, भक्त होने के बाद भी ऐसी वृत्ति पूरी तरह शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध भक्त नहीं, वो भक्त है लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। तो ऐसे इतिहास में बहुत घटनाएं देखते हैं, हमारे जीवन में भी हम देख चुके होंगे कि लोग कैसे अपने से ज्यादा किसी व्यक्ति को है तो उसके प्रति ईर्ष्या करते हैं। तो खास करके जो राजकुल के लोग होते हैं राज परिवार के सदस्य होते हैं उनके पास बल होता है, बलवान होते हैं, सुंदर भी होते हैं, धनवान होते हैं और वीर भी होते हैं, शूरवीर भी होते हैं, ये सब गुण होते हैं उनके अंदर। तो इसलिए उनके अंदर थोड़ा घमंड और अहंकार आ जाना ये स्वाभाविक है, आ जाता है। कभी ऊंचा पद मिल जाता है ना, कर ही देते। इंद्रदेव ने ऐसे अपने गुरु के प्रति भी अपराध किया। यहाँ प्रभुपाद जी वैष्णव अपराध और गुरु अपराध की बात कर रहे हैं ना। तो बृहस्पति जो देव गुरु हैं उनके दरबार में आए और इंद्रदेव अपने इंद्र तृप्ति में इतने मग्न थे कि वो उठे नहीं उनका स्वागत करने के लिए। तो बृहस्पति चुपचाप वहां से निकल के चले गए, परंतु उन्होंने शाप दिया उनको। क्या हो गया? क्या नहीं, हाँ, परंतु उनका सारा शक्ति क्षीण हो गया और फिर हार गए। और एक बार इंद्रदेव को एक और नीच निम्न योनि मिल गई, शुक्रवार की योनि मिल गई, नहुष थे ऐसे, उनको सांप बनना पड़ा। इस तरह से कितने सारे उदाहरण हैं। तो जो महान व्यक्तियों का अपमान करते हैं, अपराध करते हैं उनके प्रति, उनकी दुर्गति ही होगी। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी चेतावनी दी गई है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, खास करके भक्तों के प्रति, किसी के प्रति ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। परंतु खास जो भगवान के भक्त होते हैं उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना धनी हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ। हो जाता है, ऐसे इच्छा आ जाती है। जैसे कहावत है, एक भिखारी को भी अपने 10 पैसे का घमंड होता है कि उसके पास 5 पैसे, मेरे पास 10 पैसे, मैं उससे ज़्यादा हूँ। नहीं तो अहंकार आने के लिए कुछ ज़्यादा आवश्यक नहीं है, थोड़ा सा कुछ आ गया अब सर फूल जाता है। तो यहाँ भौतिक जगत में सबका सर फूला हुआ है, थोड़ा सा कुछ हो गया बस इतना बड़ा हो जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं, फुग्गा बोलते, क्या फुग्गा, फुग्गा मनते क्या मन करते, फुग्गा उसको बुलाते, फिर उसको फोड़ना है तो क्या करते हैं, टप करते हैं। तो भगवान भी ऐसे टप कर देते हैं तो ठप हो जाता है सब, हमारा अहंकार घमंड सब खत्म। छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है, हृदय का दौरा आ जाता है, कुछ भी और हो जाता है, सब खत्म। इसलिए महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं कि कभी घमंड नहीं लाना चाहिए। ये मत सोचो मेरे पास ये है, वो है, ये है, किस चीज़ के है, ये तुम्हारा है नहीं वैसे भी, किस चीज़ का घमंड है? दूसरे से पैसे उधार लेके फिर डिंडोरा पीटना कि मैं कितना धनी हूँ। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं कि खास करके ब्राह्मणों और वैष्णवों का अपमान नहीं करना। साधारण व्यक्तियों को अपराध करना भी ये एक बुरा कर्म होता है, परंतु जब वैष्णवों के प्रति ऐसे अपराध करते हैं तो ये बहुत भयानक हो जाता है। तो इसको वैष्णव अपराध कहते हैं। तो भगवान कृष्ण के नाम के जप करने में अपराधों का विचार होता है। यदि हम अपराधों से बचें, इन 10 नाम अपराधों से बचें, तो हम शुद्ध नाम ले सकते हैं और शुद्ध कृष्ण प्रेम शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। परंतु शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में विलंब या देर इसलिए हो जाती है क्योंकि हम 10 नाम अपराधों से मुक्त नहीं होते हैं। और सबसे खतरनाक नाम अपराध कौन सा है, जहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं? गुरु अवज्ञा और वैष्णव अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध करना। तो इससे हमारे सारे जो तपश्चर्या की पूंजी है वो नष्ट हो जाती है और भक्ति में स्वाद निकल जाता है। इसलिए भक्त समाज में भी हम देखते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं, तो कभी हमको थोड़ा पद मिल जाता है तो हमको थोड़ा घमंड होने लगता है, अन्यों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, या यहाँ तक कि कोई ज़्यादा तपस्वी हो जाता है, ज़्यादा वैरागी हो जाता है, तो उसको भी घमंड आ जाता है, वो भी अन्यों के प्रति ठीक से व्यवहार नहीं करता है, को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, धुआंधार प्रवचन देता है, बहती हुई गंगा की तरह श्लोक पट 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 मुँह से आते हैं, सोचते वाह मेरे जैसा कोई पंडित नहीं। तो भक्ति में भी ऐसे सब होने की संभावना होती है, इसलिए भक्त को चाहिए कि वो सदैव बहुत बच के रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को कोई अच्छे गुण हो तो उनका कृष्ण के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, परंतु घमंड नहीं आने देना चाहिए मन में, और इस घमंड के कारण अन्यों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये बात पृथु महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं। तो वैष्णव अपराध के कौन से उदाहरण आप बोल सकते हैं, हाथ ऊपर कीजिए, कोई एक उदाहरण जो आपको याद है शास्त्रों में। हाँ
दक्ष महाराज शिव जी के प्रति
क्या हुआ, संक्षेप में बताओ
कि वो शिव जी के बारे में बड़ा बुरा कहते हैं, जबकि शिव जी का कोई गलती नहीं होता है उस टाइम पे,
और फिर क्या होता है परिणाम, परिणाम भी बताओ, किसने किसके प्रति अपराध किया, क्यों किया, और परिणाम क्या हुआ।
परिणाम आखिर में उनको बकरे का सिर मिलता है और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेते।
परिणाम ये हुआ। हाँ ये परिणाम हो गया, फिर दूसरा सर लगाना पड़ा, प्लास्टिक सर्जरी हो गया। ठीक है, और अभी क्या हुआ, इसके पीछे इतिहास ये था कि शिवजी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती, सती ने विवाह किया था शिवजी से। अब दक्ष प्रजापति शिवजी को इतना पसंद नहीं करते थे, मेरी बेटी ने उनको शादी कर लिया, वो इतने खुश नहीं थे, वो शिवजी की महानता को नहीं जानते थे कि शिवजी कितने महान है, इतने महान वैष्णव है ये। तो एक बार उन्होंने बहुत बड़ा अनुष्ठान का आयोजन किया अपने स्थान में, सबको बुलाया लेकिन अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। जब बेटी को पता चला सती को, तो सती को बहुत गुस्सा आया, उसको बहुत बुरा लगा, मेरे पिताजी ने ऐसे मुझे नहीं बुलाया, सबको बुलाया, सारे दुनिया को विश्व को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैं तो पुत्री हूँ ना, बेटी हूँ, तो मेरा अधिकार है, कभी भी जा सकती हूँ। तो फिर उसने अपने पति से कहा ऐसे ऐसे है, देखो बुलाया नहीं बुलाया नहीं, शिव जी तो संत हैं हमारे, क्या है भूल जाओ, जाने दो। होता ना कभी आप में जो गृहस्थ हैं, आप सब इन चीज़ों से परिचित होंगे, ये सब आदान प्रदान है ना, ये सब। तो कोई तकलीफ हो जाती है पत्नी को, किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो कोई आता है, फिर घर में जाके वो ऐसे पति बोला जाओ राव देना तक का है, रहने दो, नहीं 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 मुझे जाना है, हाँ मुझे जाना है, क्या बोलते शिव जी, अभी वो इतनी जिद कर रही थी, वो चली गई, बोला कि जाओगी तो देखो लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा, देखो वहाँ जाओगी तो, लेकिन उसने मन में ठान लिया था मुझे जाना है, मायके जाना है, वो चली गई उधर, और वहाँ पर उनका अच्छा स्वागत नहीं किया दक्ष ने। तो शिवजी के गणों ने जब भी उनको संदेश दे दिया तो शिवजी को बुरा लगा कि ऐसे कैसे मेरे पत्नी का अपमान कर सकते हो, पत्नी का अपमान भी अपना अपमान, तो वो भी अपने लोगों के साथ निकले। तो एक बार मैं इस कथा कर रहा था इसी विषय के ऊपर, तो एक माताजी ने मुझे प्रश्न पूछा कि शिवजी इतने महान व्यक्ति हैं तो वह अपने पत्नी को क्यों नहीं समझा पाए कि नहीं जाओ। तो मैंने कहा, देखो आप गृहस्थ हैं, आप जानते हैं, आप जब मन ठान लेते हैं आपके पति कुछ कर सकते हैं इसके बारे में? होता है कि नहीं ऐसे? आप में जो कितने गृहस्थ भक्त हैं, हाँ आप जानते हैं ना, कभी होता है ऐसा कि नहीं? एक बार ठान लिया तो ठान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें माताजियों को कम देखना चाहिए। उनका अपना अच्छे अच्छे गुण होते हैं, वो हमको सब हमेशा सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। कभी भी महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, अन्यों की पत्नी बेटी जो भी है। वैदिक सभ्यता है और खास करके भक्ति में बहुत ही सम्मान से, ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलना चाहिए माताजियों के साथ। हाथ उठाने की बात तो दूर रही, ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलना चाहिए, सम्मान से ही सदैव व्यवहार करना चाहिए। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, तो हमने बताया भी क्या करें, शिव जी तो महान है लेकिन गृहस्थ है, तो कभी कभी ऐसे होता है पत्नी पति की बात नहीं मानती है, तो पति को बोलना पड़ा, ठीक है बाबा जो करना है करो, अभी क्या करो, ऐसे होता है। तो सती चली गई और फिर शिव जी को स्वयं वहाँ आना पड़ा और फिर इतना विध्वंस हो गया वहाँ पर। तो ये एक उदाहरण है। और कोई उदाहरण वैष्णव अपराध के? हाँ महान वैष्णव अपराध किया प्रहलाद, इतने बड़े वैष्णव और हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया, ऐसा कोई अपराध छोड़ा ही नहीं है ना, वैष्णव अपराध कोई छोड़ा नहीं। वो कुछ कटु वचन बोले, गाली गलौज किया, मारने का प्रयास किया, ऊपर से फेंकने का प्रयास किया, पागल हाथी के पैरों के तले कुचलवाने का प्रयास किया, क्या नहीं किया, ऐसे कोई अपराध रहा नहीं जो हिरण्यकश्यप ने किया नहीं। तो क्या परिणाम हुआ? उनकी भी कट गया, वक्षस्थल फाड़ दिया भगवान ने। भगवान के दरबार में देर हो सकता है परंतु अंधेर नहीं है। इसलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसने ऐसे किया कुछ हुआ नहीं, होगा अपने समय पे सब होगा। और कोई वैष्णव अपराध जिसके बारे में आप बता सकते हैं शास्त्र में?
रामचंद्रपुरी और माधवेंद्रपुरी का,
हाँ क्या था वो बताओ संक्षेप में।
रामचंद्र माधवेंद्रपुरी जो है वो रो रहे थे भगवान का विरह में, गोपियों का भाव में। तो ये
तो कौन? माधवेंद्रपुरी। तो बहुत ऊंचे भक्त थे वो,
ऊंचे भक्त थे,
पहुंचे वृंदावन के भक्त थे, शुद्ध 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 महाभागवत भक्त थे। और क्या कर रहे थे वो?
तो भगवान का सबसे सबसे
किस समय?
उनका अंतिम समय पे।
अंतिम समय पे
तो रो रहे थे।
क्यों रो रहे थे?
विरह का भाव भाव के लिए। और सबसे उन्नत तरह का क्षेत्र है उस, वो स्तर पे वो रोते थे जो गोपियों का भाव में। मगर रामचंद्रपुरी जो है वो
उनका शिष्य था,
उनका शिष्य थे, वो आके देख के उनको बोला,
वो समझ नहीं सके,
समझ नहीं सके
इनका भाव कैसा है, समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा ये तो साधारण आदमी की तरह रो रहे हैं, मृत्यु के समय आदमी रोता है ना कभी, मुझे नहीं जाना है नहीं जाना है कर, तो सोचा ऐसे रो रहे होंगे। फिर
उनको ही बोलने लगा गुरु, कोई वापस उनको
उपदेश देने लगा,
उपदेश देने लगा मृत्यु का समय में आप मृत्यु को क्यों डर रहे हैं, आप रोना नहीं चाहिए,
आप ब्रह्म का निराकार, वो ब्रह्म के में आप मग्न हो जाओ। हाँ ये सब द्वंद्वों में क्यों पड़े हो, शोक और ये सब। हाँ जो ज्ञानी होता है वो इसके ऊपर हो जाता है, तो तुम संन्यास लिया है, तुम अभी ये सब छोड़ दो, शोक करना रोना धोना छोड़ दो, ब्रह्म में अपना ध्यान मग्न करो। तो निराकार की बात कर रहे थे, और भक्त को निराकार की बात अच्छी नहीं लगती है। फिर
ये उनका शिष्य का जो ये व्यवहार देख के गुरुकुल को बहुत दुख लगा, तो फिर वही जगह पे ईश्वरपुरी थे, उन्होंने उनका सेवा कर रहे थे, उनका जब वो अंतिम समय पे उनका मलमूत्र निकालना, सेवा करना, तो पूरा तो
माधवेंद्रपुरी ने रामचंद्रपुरी को क्या कहा, ठीक है बेटा मैं करूँगा निराकार ब्रह्म में ध्यान करूँगा, ऐसे बोला
नहीं आप मेरा सामने मत रहो, आप
दूरे दूरे पापिष्ट, ये पापिष्ट मेरे से दूर जाओ, तोर मुखे देखी ले होई बे दुर्गति, कि तुम्हारा मृत्यु के समय तुम्हारा मुंह देखूंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, निकल जाओ मेरे सामने से, वैसे भी मैं रो रहा हूँ कृष्ण के विरह में, कृष्ण नहीं मिले मुझे करके, मिले थे कृष्ण उनको लेकिन ये भाव वृंदावन का भाव, मथुरा ना पाइनू न पाइनू, न कृष्ण ना पाइनू न पाइनू मथुरा, मुझे न कृष्ण मिले न मथुरा मिले वृंदावन मिला, ये मूर्ख आयले दीते आयले ज्वाला, कि ये मुझे और दुख देने के लिए मूर्ख व्यक्ति आ गया, पहले ही मैं दुखी हूँ कृष्ण को नहीं पाया मैंने, और ये मूर्ख मुझे आके और मेरा दुख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भर्त्सना की। और फिर क्या हो गया, परिणाम क्या हुआ इस वैष्णव अपराध का,
वो स्वयं भगवान ने ही वो गलती ढूंढना शुरू कर दी चैतन्य महाप्रभु का पास आके, फिर वो बोलने लगा आप सन्यासी हो के आपका घर में चींटी आ रहा है, इसका मतलब आप छुपे छुपे स्वीट कर रहे आप सन्यासी हो के ऐसा भोग करने का वृत्ति कैसे आपको आ गया, तो और उन्होंने ही महाप्रभु को अच्छा खिलाया, अच्छा खाने के बाद उन्होंने ही उनका देखो सन्यासी होके कितना खा रहा है, तो तब से महाप्रभु खाना भी प्रसाद लेना भोग लेना भी वो बहुत कम कर दिया, तो सब लोग उनको फिर बोलने लगे ये क्यों आया ऐसा।
लेकिन और क्या परिणाम हुआ,
चेतना नहीं थी कि लोगों का तिरस्कार कर रहे कि चेतना,
उसको भगवान के भक्ति में रुचि चली गई,
निंदा कर रहा
और केवल अन्यों में गलती देखना और निंदा करना, ये वृत्ति आप ऊपर आ गई। ऐसे कई लोग होते हैं ना जो बहुत अच्छी तरह से लोगों में गलतियां देखते हैं, है कि नहीं, हो या ना हो वो अलग बात है, गलती हो या ना हो लेकिन वो दूरबीन देके देखते हैं क्या इसमें गलती है उसमें गलती क्या है इसमें गलती क्या, हाँ पकड़ लिए गलती इसके अंदर है, और उसका फिर आकाशवाणी दूरदर्शन सब करना, ऐसे होते हैं ना लोग दुनिया में है? तो हमें कभी इस तरह का व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, केवल दूसरों की गलतियां देखना और फिर सब जगह उनका प्रचार प्रसार करना, ये वृत्ति बहुत खराब है, और खास करके भक्त समाज में तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए। तो ये वृत्ति उनकी हो गई रामचंद्रपुरी की। और कोई, हाँ अंजना
ने पांडवों के प्रति जीवन भर अपराध किए, जिसकी वजह से उसको पूरे सारा परिवार मरना हुआ।
तो देखो दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने और शकुनी मामा ने भी पांडवों के प्रति जो कि महान भक्त थे कितने अपराध किए, एक नहीं दो नहीं लगातार अपराध करते रहे, तो अंत में क्या हुआ, युद्ध में हार गए, सब कुछ छीन लिया गया, वो 100 के 100 कौरव मर गए और उनका राज्य में निकल गया, हार गए अपमानित हो गए सब खत्म, सर्वनाश हो गया उनका। और हाँ
महाराज विरुद्ध स्थिति में शुद्ध भक्त एक सामान्य व्यक्ति के प्रति कर रहे, जैसे रूप गोस्वामी ध्यान समाधि में थे तो एक सामान्य मनुष्य जा रहा था तो उनको लगा कि मेरे ऊपर ये हास्य कर रहे हैं, तो उनका समाधि भंग हो गया, तो उसके बाद सनातन गोस्वामी ने बोला कि आपको इसका उपचार के लिए सबको भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए और तब आपका
उस व्यक्ति को अच्छे से संतुष्ट करना चाहिए तब आप इससे एक शुद्ध भक्त का एक सामान्य व्यक्ति के साथ।
इसके पीछे कहानी थोड़ी मैं विस्तार में बोलता हूँ इसी चीज को। रूप गोस्वामी वृंदावन में एक बार अपने लीला स्मरण कर रहे थे, कृष्ण लीला स्मरण। लीला में क्या देख रहे थे कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण है, और श्रीमती राधा रानी बोल रहे हैं कि मुझे वो फल चाहिए या फूल चाहिए। तो वो एक शाखा थी पेड़ की, तो उसको नीचे करना था, तो नीचे किया और पकड़ा। राधा रानी कहा कि कृष्ण तो वो फूल या फल निकालो वहाँ से। तो श्री कृष्ण ने उसको पकड़ा और वो निकालने के लिए जा रहे थे, इधर से राधा रानी ने पेड़ छोड़ दिया। तो क्या हो गया, ऊपर गया ना, तो ऊपर गया तो कृष्ण भी ऐसे ऊपर गए। समझ गए अब क्या हुआ, पकड़ के रहे, वो पकड़ते रहे तो वो ऊपर चले गए एकदम शाखा से। तो राधा रानी भी हंसने लगी, राधा ये केवल राधा रानी कर से ऐसे मजाक उड़ाना। हाँ, बाल बाल भी ऐसे मजाक उड़ाते हैं कृष्ण का, ये वृंदावन में होता है, बाकी कहीं जगह नहीं। किसी की ऐसी मजाल की नरसिंह देव के प्रति ऐसे। तो ये वृंदावन का विशेष भाव है, वृंदावन में ऐसा होता है, मधुर मधुर लीला होती है भगवान की। तो अपने ध्यान में रूप गोस्वामी देख रहे थे, तो ऐसे ध्यान में ही देख रहे थे, इतना एक मतलब हास्यपद एक घटना थी कि वो जोर से हंस पड़े। वो हंस पड़े, ध्यान में थे, ध्यान में वैसे हंसे वो, और दैव से हुआ ये कि ठीक उसी समय एक और वैष्णव वहां पर आए उनके सामने, और वो वैष्णव लंगड़े थे। तो लंगड़ते लंगड़ते आए और ठीक उसी समय रूप गोस्वामी हंसे। अभी रूप गोस्वामी का हंसने का कारण क्या था कि वो अपने ध्यान में कुछ देख रहे थे उसके कारण वो हंस रहे थे, परंतु वो जो आए हुए वैष्णव थे उन्होंने क्या सोचा कि मेरे को लंगड़ाते हुए देख के मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा, तो चुपचाप वहां से वापस चले गए। फिर रूप गोस्वामी का ध्यान भंग हो गया। रूप गोस्वामी को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ कि ये व्यक्ति आए थे अपमानित हो गए चले गए, उनको कुछ पता नहीं, वो तो ध्यान में थे ना। फिर रूप गोस्वामी का ध्यान भंग हो गया, फिर बहुत प्रयास उन्होंने किया कि क्या ध्यान फिर से लगता नहीं है। फिर अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास बात करने लगे कि अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। तो सनातन गोस्वामी ने तभी सोचा और बोला कि किसी वैष्णव का तो अपराध किया होगा आपने। अरे मैंने तो कभी नहीं किया वैष्णव अपराध, मैंने किया होगा नहीं तो कैसे, फिर अनजाने में किया होगा, जानबूझ के नहीं किया तो अनजाने में किया होगा। तो अनजाने में नहीं किया तो कैसे पता चलेगा अभी। तो ठीक है, ऐसा करो, देखो उस समय वृंदावन में वैष्णवों का समाज इतना बड़ा नहीं था, जैसे अभी हम बैठे ना गोकुल में, इतना ऐसे थोड़े बहुत थे, 50-50 जितने भी होंगे थोड़े बहुत थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि एक वैष्णव भोज का आयोजन करो, फीस्ट, तो सारे वैष्णवों को निमंत्रण दो और फिर देखो कि कौन नहीं आता है। जो व्यक्ति नहीं आएगा इसे हम समझ सकेंगे कि उसके प्रति आपने अपराध किया, इसलिए वो नहीं आया है। देखो सनातन गोस्वामी कितने बुद्धिमान। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, किसी किसको बुलाएंगे। कहाँ ऐसे करे, कोई आएगा नहीं फिर हमारे पास, है ना। तो फिर वही एक व्यक्ति वैष्णव नहीं आए, तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी देख रहे थे कि कौन से वैष्णव नहीं आए, नहीं ये भी आए, ये आए आए आए, हाँ वो नहीं आए। तो फिर रूप गोस्वामी उनके पास गए, प्रसाद होने के बाद उनके पास गए, आप क्यों नहीं आए, हमसे कोई गलती हुई क्या। तो बोले हाँ आप, मैंने सोचा आप इतने महान वैष्णव हैं और आप एक दीन व्यक्ति के ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैंने मजाक उड़ा? किसका मजाक उड़ा? मेरा बड़ा, मैं लंगड़ा तो इसलिए आपने मजाक उड़ाया मेरा। अरे मैंने तो कभी नहीं उड़ाया। तो क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, हाँ मैं आया था आपके सामने और जैसे मैं आया आप हंसने लगे। तो फिर रूप गोस्वामी बताया रहे हंसा मैं, लेकिन फिर कारण बताया कि ऐसे ऐसे मैं लीला स्मरण कर रहा था, हाँ तो उस समय अनजाने मुझे नहीं मतलब पता था कि आप सामने आए हैं। तो इस तरह से फिर वो निवारण हो गया समस्या का। फिर दोनों ने एक दूसरे को दंडवत प्रणाम किया, मामला मिट गया। फिर रूप गोस्वामी का ध्यान फिर से अच्छा हो गया। हाँ तो इसलिए अभी जो प्रश्न करते हैं कि जप में ध्यान क्यों नहीं लगता। हमारे बीच अरे तुरे चलता रहता है ना, तो इसलिए फिर जप में ध्यान कैसे लगेगा। हाँ इस तरह से हमको भी बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए हम हर दिन सुबह को क्या करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कितने वैष्णवों को हम प्रणाम करते हैं? अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इसलिए समस्त वैष्णव दास। ये केवल वैष्णव दास नहीं है, समस्त वैष्णवों के दास उनको प्रणाम। सारे वैष्णव का प्रणाम हो जाता है। तो वैष्णव प्रणाम फिर से बोलिए। इसका अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? सूरज बोलो। कौन बोलना है? हाँ अक्षय।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जो वांछा है, इच्छाएं जो है, और जो कल्पत वैष्णव कल्पतरु की तरह है, जो जो सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, कृपा सिंधु रहच और वो कृपा के सागर हैं, पतितानं पावनेभ्यो, जो पतित है उनको उनका उद्धार करते हैं, ऐसे वैष्णव को प्रणाम करते हैं।
वैष्णवेभ्यो मतलब सारे वैष्णव, ऐसे नहीं कि एक ही वैष्णव, सारे वैष्णव। जब मैं वृंदावन में था तो ये भी घटना आपको बोली होगी मैंने, सब अन्य भक्तों का थोड़ी शिकायत थी एक भक्त के बारे में। तो सब लोग आके मुझे बोल रहे थे इनको जरा बोलिए, सबके साथ झगड़ा करता है, ठीक से व्यवहार नहीं करता है, किसी से सहयोग नहीं करता है, हाँ कोई भी बात बोलें तो ठीक से जवाब नहीं देता, कोई भी सेवा हो तो कुछ गड़बड़ होता है, तो बात करिए इनसे। तो फिर मैंने भक्त को बुलाया, देखो ऐसे सब भक्त बहुत शिकायत कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, भक्तों के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए, ऐसे क्यों भक्त लोग ऐसे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। हाँ वो बोलेगा ऐसे उसने ऐसे किया ऐसे, वो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तुम जाके उधर प्रणाम करो, उनको दंडवत करो, वो भी दंडवत करेंगे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च बोल के मामला खत्म कर दो, सब मिट जाएगा, हो जाएगा। फिर उसने बोला, मेरे गुरु के सिवाय मैं किसी को प्रणाम नहीं करता। बोला हाँ ये समस्या है तुम्हारी, क्या गुरु को प्रणाम करता हूँ ये समस्या है? बोला नहीं, गुरु के सिवाय और किसी को नहीं करते हो ये समस्या है। तो तुम्हारे मन में इतना घमंड आ गया कि केवल गुरु को करूँगा और बाकी सब ये सब तुच्छ है, को नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। और इसलिए तुम्हारा साथ, तुम्हारे लिए सबके साथ झगड़ा हो रहा है और सबके मन में तुम्हारे प्रति अच्छी भावना नहीं है। क्यों ऐसे है? क्योंकि तुमने सबका सम्मानपूर्वक प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं किया सबके साथ, अपने आप को तुम बहुत विशेष समझते हो, मैं बहुत विशेष भक्त हूँ, केवल मेरे गुरु को प्रणाम करूँगा और किसी को नहीं करूँगा। तो इसलिए हमें सारे वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का तो करना ही करना है, लेकिन सबका करना चाहिए। ये होता है वैष्णव, भगवान का भक्त। तो पृथु महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो, खास करके जो वैष्णव आदि ब्राह्मण होते हैं वो अपने गुणों से पहचाने जाते हैं, वो गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। तो किसी की महिमा किसमें होती है? स्वयं अपने गुणों में। किस प्रकार के गुण? कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत सौंदर्य है, ऐसे गुण नहीं। किस प्रकार के गुण? यहाँ पृथु महाराज कहते हैं सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान, शिक्षा, ऐसे सारे जो साधुओं के गुण होते हैं, ऐसे गुणों से जो युक्त होते हैं, संपन्न होते हैं, ऐसे गुणों के द्वारा व्यक्ति महिमा मंडित होता है। ये वैष्णवों का वास्तविक आभूषण है। वैष्णव की सुंदरता शारीरिक सुंदरता में नहीं होती है, वैष्णव की सुंदरता अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता उसके गुणों में है। यदि कोई व्यक्ति सद्गुणों से सुसज्जित है, अलंकृत है, तो वो भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान हमारे शारीरिक सौंदर्य से, हमारे बुद्धि से, हमारे धन आदि से आकर्षित नहीं होते हैं। आखिर ये तो सब भगवान ने दिए हुए हैं। तो भगवान किन चीज़ों से आकर्षित होते हैं? हमारे दिव्य गुणों से आकर्षित होते हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं, दिव्य गुण, सद्गुण होते हैं, विशेष करके भक्ति के सद्गुण, तो फिर भगवान ऐसे व्यक्ति के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना सहज हो जाता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो भक्ति करते करते सारे अच्छे गुण आ जाते हैं अपने आप, परंतु समय लगता है। इसलिए हम उस समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें सद्गुणों को प्रत्यक्ष अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करना चाहिए साथ साथ में। उदाहरणार्थ, अभी मैं अभी नम्र नहीं हूँ, तो भक्ति करके जब अपने आप नम्रता आएगी, तब तक मैं नम्रता नहीं दिखाऊंगा। ऐसे यदि हम सोचेंगे तो ये ठीक नहीं है। भले स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर नम्रता न भी हो, तो हमें प्रयास करना चाहिए नम्रता से व्यवहार करने के लिए। तो ऐसे करते करते फिर धीरे से वो मानसिकता भी बनती है नम्र होने की, फिर भगवान आकर्षित होंगे। भगवान केवल हमारा जो क्या कहते हैं उसको, धुआंधार सेवा से आकर्षित नहीं होते हैं। किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं उससे आकर्षित होते हैं भगवान। यदि हमारे अंदर बहुत घमंड है, सेवा हमने देखो इतना चमत्कार कर दिया, ये कर दो, भगवान बोलते हैं क्या है, आकर्षित नहीं होते भगवान। तो सेवा भाव बहुत आवश्यक है। इसलिए उस दिन मैं चर्चा कर रहा था ना आपके यहाँ या कहीं और, पता याद नहीं आ रहा भी, कि भक्ति में प्रगति करने के लिए दो खंबे हैं। एक शक्तिशाली श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन में क्या आ जाता है? प्रवचन सुनना, पुस्तकों का, ग्रंथों का अध्ययन करना, जप करना और सुनना, ये सब चीजें। तो ये मूल बात है। और दूसरी बात, विनम्र सेवा भाव। हम एकदम कड़क साधना करते हैं परंतु सेवा नहीं करेंगे, उनका नहीं करेंगे, मैं नहीं करेंगे, मैं वो ये करूंगा जो मुझे पसंद है, तो फिर ऐसे में प्रगति नहीं करेंगे। विनम्र सेवा भाव बहुत आवश्यक है। विनम्र सेवा भाव में हम आतुर होते हैं सेवा करने के लिए, जिम्मेदारी से सेवा करते हैं, सेवा को पूर्ण करते हैं, सेवा करने के बाद घमंड नहीं होता है। तो ये दो चीजें क्या है, शक्तिशाली श्रवण कीर्तन, विनम्र सेवा भाव। ठीक है, बिना निद्रा का श्रवण कीर्तन, जप आणि झोप, ते दोन्ही सोबत जात नाहीत, ऐकायला असं नजदीकी लागते, ज झो झ झ झोप जप झोप, लेकिन जप में झोप नहीं होना। और जब भी परिवार में हो, आश्रम में हो, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो क्या करना चाहिए, दो कौन से चीजें करनी चाहिए आपको बताया ना, क्या है,
जप और गप,
जप आणि गप। नहीं तो घरामध्ये भांडण 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 झाले की नाही काय करायचं, जप गप्प बसायचं आणि जप करायचं, उलट उत्तर द्यायचं नाही। त्यांनी असं म्हटलं आणि मी पण वो शेर तो मैं सवा शेर कुछ बोलून हे वाढत जाईल मग। समाज में यही चल रहा है ना, सब एक दूसरे को सीना तान के बात करने में लगा रहे हैं सब लोग। तो इसलिए हमको ये सब चीजों में नहीं पड़ना है, हमको भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाना है, पुनर्जन्म नहीं लेना है, और साथ में जितने लोगों को ले जा सके हम वैकुंठ वैसे निकलना चाहिए। तो पृथ्वी महाराज ऐसे बोल रहे हैं कि हमको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न टीका, टाइम क्या हुआ, समय
10:15
अरे अच्छा, हाँ
जो लंगड़े वैष्णव का उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, तो आपने बताया भी कि हम कितने सारे वैष्णव को बुला सकते हैं, तो उसमें मेरा प्रश्न है कि अनजाने में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से हम प्रशिक्षित नहीं हैं और स्वभाव अलग है, तो उत्तर क्या यही है केवल सुबह वैष्णव प्रणाम करने से वो उससे चुप?
नहीं, हमें सावधान भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए ताकि ऐसे ना हो।
जो भी जिसके साथ भी हम यहाँ व्यवहार करते हैं,
नहीं यदि हम जानते हैं कि किसी के प्रति हमने अपराध किया है तो फिर स्वयं उससे जाके बात करना चाहिए। यदि हमको पता नहीं है तो क्या कर सके, किसके पास जाएंगे, पता ही नहीं है तो क्या करेंगे। परंतु सावधानी से रहना चाहिए।
महाराज जब हमको सेवा दिया जाता है पूरा मन हृदय लगा के उसको सेवा करना, तो मतलब उसको सबसे अच्छा हम कैसा सेवा करें ताकि हम वैष्णवों को गुरुओं को संतुष्ट करें, तो ये भाव में हमको करना चाहिए। साथ साथ में ये जब करते समय में हमको ये भी ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा मन धन उसमें डाला हुआ रहते तो ये इस साइड से अहंकार भी नहीं आना चाहिए, ये दोनों भी बैलेंस करना चाहिए। क्या होता है अहंकार नहीं आना है बोले तो ये सेवा ही छोड़ देते, नहीं तो सेवा करते करते ये अहंकार आ जाते, तो इसको दोनों को भी कैसा बैलेंस करके।
नहीं, इसलिए विनम्रता से सेवा होना चाहिए, साधारण से सादा सेवा करने के लिए। कभी हमको सोचना नहीं चाहिए कि अभी मैं बड़ा भक्त हो गया, अभी मैं ये सब नहीं करूँगा, ये सब नए भक्तों के लिए, ये सब वो ऐसे ऐसे। हम सबको तैयार होना चाहिए। कोई भी सेवा करने के लिए, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं, सेवा में भगवान के दरबार में कोई ऊपर नहीं नीचे नहीं कुछ नहीं। लेकिन हर एक को समझना चाहिए, इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें भेद भी करना चाहिए कि ये नए हैं तो किस तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए, कोई बहुत वरिष्ठ है तो कैसे बात करना चाहिए। ये भेद, ये विवेक होनी चाहिए, परंतु अपने भाव में कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए भगवान के लिए। आई तो ठीक है। हाँ धन्यवाद। अंतिम प्रश्न
महाराज, आज की प्रणाली में जो नए नए आते हैं, बहुत सारा एक्सपोजर, मतलब बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करके आते हैं, मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, और जब गोकुलधाम में आते हैं तो हम तो मतलब पारंपरिक पद्धतियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब वो आते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये लोगों को इनके ज्ञान नहीं है, तो फिर उसमें जब वार्तालाप होता है तो वो जो सोचते हैं कि हाँ शायद इनको कम बुद्धि है, तो क्या ये भी अपराध की इसमें आता है या
नहीं? नहीं, सबको साथ में लेके चलना, सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है ना, कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से आए, सब अपना अपना सामान साथ में लेके आते हैं, इधर का सामान है ना, जहाँ से भी आदमी आए भक्ति में वो अपना सामान लेके आता है साथ में, बोरी बिस्तर यहाँ पे लेके आता है, तो उसको त्यागना थोड़ा मुश्किल होता है। जहाँ से भी व्यक्ति आया हो वो सब अधिक सामान जो है वो निकालना पड़ता है, उसके थोड़ा समय लगता है। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।